हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का काम करने का नाम अनुवाद है। संस्कृत वाक्यों में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान क्रम स्थिर नहीं है। पद का अर्थ निश्चित होता है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार इन पदों को किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ संस्कृत भाषा की विशेषता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात राम पुस्तकम पठति, राम पठति पुस्तकम, पुस्तकम पठति राम। यह कारक प्रधान भाषा है। कारक की परिभाषा। कारक उसे कहते हैं जिसका साक्षात संबंध क्रिया के साथ हो। कारक छह प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण मिथ्याहु करण काणि षष्ठ। संबंध और संबोधन दो उपकारक हैं, इनको कारक नहीं माना गया क्योंकि इन दोनों का साक्षात संबंध क्रिया के साथ नहीं होता। अव्ययों को छोड़कर कोई भी शब्द या धातु ऐसी नहीं जिसका बिना रूप चलाए प्रयोग किया जाता हो। अतः शुद्ध अनुवाद के लिए वचन विभक्ति व पुरुष का ज्ञान अपेक्षित है। यहाँ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वाक्य में कर्ता कौन है। दूसरा, क्रिया किस लकार की है। तीसरा, कर्ता किस वचन का है। चौथा, कर्ता किस पुरुष का है। पांचवा, कर्ता किस लिंग का है। इन पांच बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। संस्कृत के तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जहाँ युष्मद शब्द के त्वम, युवाम, युवम रूपों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जहाँ अस्मद शब्द के अहम, आवाम, वयम रूपों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। शेष अन्य सभी संज्ञा स्वरनाम आदि शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं और उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसीलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। अनुवाद करने के सामान्य नियम। पहला, किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पूर्व उस वाक्य के कर्ता, क्रिया और कर्म को तथा अन्य कारकों के बोधक चिन्हों को भली भांति समझ लेना चाहिए। कारक चिन्ह इस प्रकार है। कारक चिन्ह कर्ता, ने, कर्म को, करण, से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण मे, पे, पर, संबोधन हे, रे, अरे। दूसरा, अनुवाद में केवल अव्ययों को छोड़कर कोई अन्य शब्द बिना किसी विभक्ति अथवा प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता। तीसरा, किसी भी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग हो सकता है, परंतु क्रिया पर इस लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं होगा। चौथा, कर्ता जिस पुरुष या वचन का हो उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग की जाएगी। यथा, बालक पठति, तव पठता, ते गच्छन्ति, त्वं पठसि, युवा पठथ, यूयम पुस्तकम पठथ, अहम पत्रम लिखामि, आवाम गच्छाव, वयम गच्छाम। पांचवा, संस्कृत में अनुवाद करते समय विशेषणवाचक शब्दों के अनुवाद पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये विशेषण पद अनेक प्रकार के होते हैं। नियमानुसार विशेषण पद में भी वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होना चाहिए जो कि उसके विशेष संज्ञा में हो। अतः वाक्य में यह देख लेना आवश्यक है कौन कौन से पद किस किस पद के विशेषण हैं। पहले विशेष का अनुवाद करके तदनु विशेषण पद का अनुवाद करना चाहिए। यथा, पढ़ते हुए राम ने जाते हुए मोहन को देखा, पठन रामा गच्छन्तम मोहनम अपश्यत। छठा, कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। इसके अतिरिक्त क्रिया जिस काल की हो उसी काल की क्रिया का रूप लिखा जाता है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ कर्ता वह, सह प्रथम पुरुष एक वचन का आया, इसके अनुसार क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। पढ़ता है, क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है, अतः पढ़ धातु के वर्तमान काल का रूप प्रयोग में आएगा। वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पठ धातु में पठती बनेगा, इसीलिए वह पढ़ता है का अनुवाद हुआ सह पठती। इसी तरह अन्य वाक्यों को समझना चाहिए। नीचे दी गई तालिका में कर्ता और क्रिया का साथ साथ प्रयोग देखिए। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सह पठती, वह पढ़ता है। तव पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, तुम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। युजम पढ़ता, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। सातवां, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम आदि कर्ताओं के अतिरिक्त जितने कर्ता होते हैं उनके साथ सदा प्रथम पुरुष तथा अन्य पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे सा पठति वह पढ़ती है, राम गच्छति राम जाता है, क लिखति कौन लिखता है, अश्व धावती कौन दौड़ घोड़ा दौड़ता है, छात्र पढ़ता दो छात्र पढ़ते हैं, बालिका लिखंती लड़कियाँ लिखती हैं आदि। इस प्रकार कर्ता और क्रिया से युक्त वाक्य बनते हैं। इनके अतिरिक्त वाक्य में जितने शब्द आते हैं इनका प्रयोग उनके कारकों के अनुसार होता है। आठवां, अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य का कर्ता खोजना चाहिए। कर्तृवाच्य में क्रिया का पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाली वस्तु कर्ता होती है। फिर कर्ता यदि एक वचन हो तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप, द्विवचन हो तो प्रथमा के द्विवचन का रूप और बहुवचन हो तो प्रथमा के बहुवचन का रूप निश्चित करना चाहिए। इसके बाद कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए। इसके बाद क्रिया के उस काल के रूपों में से कर्ता के पुरुष तथा वचन वाला एक रूप छांट कर लिख देना चाहिए। इसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों के कारक तथा वचनों के अनुसार रूप भी यथास्थान लिख देना चाहिए। जैसे राम हाथ से पत्र लिखता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है तो क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में राम आता है, अतः यहाँ कर्ता है। हमने इसके संस्कृत राम लिख ली। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया में वर्तमान काल है, अतः हमने लिख धातु का वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखती बना लिया। हाथ से में करण कारक या तृतीय विभक्ति का एक वचन है, अतः हस्त शब्द का तृतीय एक वचन हस्तेन और इसी प्रकार पत्र को भी की संस्कृत कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पत्रम लिख लिया। इस प्रकार उक्त वाक्य का संस्कृत अनुवाद राम हस्तेन पत्रम लिखती हुआ। यही सरल तरीका है। नौवां, क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। यथा गच्छति पठसी अपठत पठेत आदि क्रियाओं में गच्छ गम पठ धातु है। ये सब धातु तीन प्रकार की होती हैं, परस्मैपद आत्मनेपद तथा उभयपद। परस्मैपद धातुओं में तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस प्रत्ययों का तथा आत्मनेपद धातुओं में त आताम झ थास अथाम ध्वम इट तहिंग महिंग आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। विशेष नियमानुसार इन प्रत्ययों के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न प्रत्ययों के जोड़ने से धातु के विविध रूप बनते हैं। सुविधा के लिए परस्मैपदी धातुओं में निम्न प्रकार से जोड़कर धातु रूप बनाया जा सकता है। इंटरमीडिएट स्तर के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। लटलकार वर्तमान काल, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष ती तह ती, मध्यम पुरुष सी थ थ, उत्तम पुरुष मी वह माह। उदाहरण, मूल धातु में जोड़कर पठति लिखत पिबंति दृढ़सी धावथ आदि क्रिया रूप बनाते हैं। लोट लगा अज्ञार्थक, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष तू द्विवचन ताम तु, मध्यम पुरुष तू तम त, उत्तम पुरुष नी आओ अम। उदाहरण, पढ़तु लिखताम लिखंत क्रीडंतु पश्यंत आदि। विधिलिंग चाहिए अर्थ, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष तेम ताम ये हो, मध्यम पुरुष ये तेम ते, उत्तम पुरुष यम व म। उदाहरण, भवेद हसेद कृणताम खदेयु गच्छेयम पठेयो पठेयम रचेयम आदि। लंग लकार भूतकाल, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष अत ताम अन, मध्यम पुरुष अह अतमा अत, उत्तम पुरुष अम आव अम। उदाहरण, अलिखत अपठत अगच्छत अपतम आदि। रेट लकार भविष्यत्काल, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष इष्यधन्ति इष्यधन्तः इष्यधन्ति, मध्यम पुरुष इष्यधन्सि इष्यधन्थः इष्यधन्थ, उत्तम पुरुष इष्यधन आमि इष्यधन आवः इष्यधन आमः। उदाहरणार्थ, मूल धातु गम धन इष्यत धनती गमिष्यति, पठ धन इष्य धनतः पठिष्यतः, लिख धन इष्य धनसी लिखस्यसि आदि। उक्त पांच लकारों के अतिरिक्त अन्य पांच लकारों के नाम गणना ही की जा रही है क्योंकि उनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाता है। लिट परोक्ष भूत, लुट अनदितन भविष्यत, आशीषि लिंग आशीर्वादार्थक, लुंग सामान्य भूतकाल, लिख हेतु हेतु मद भावार्थक। आदर्श अभ्यास एक, लटलकार वर्तमान काल नियम। वर्तमान काल में कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्त होती है, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, रामा पुस्तकम पठति। सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, सर्वे छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। तुम गांव कब जाते हो, त्वम ग्रामम कदा गच्छसि। तुम दोनों गर्म जल पीते हो, युवाम उष्णम जलम पीवथ। मैं घर क्यों जाता हूँ, अहम गृहम किम गच्छामि। दूसरा नियम दो, जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं और च से जुड़े होते हैं तो क्रिया द्विवचन की होती है। यथा पाला, राम मोहन बाजार जाते हैं, राम मोहनश्च आपणम गच्छतः। सीता और गीता खाना खाती हैं, सीता गीता च भोजनम खादतः। नियम तीन, जब वाक्य में दो कर्ता वा अथवा से जुड़े होते हैं तो क्रिया द्विवचन की न होकर एक वचन की होती है। जैसे राम अथवा मोहन बाजार जाता है, राम मोहन वा आपणम गच्छति। नियम चार, यदि मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का एक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनांत होती है, और यदि एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचनांत होती है। जैसे तुम और राम जाते हो, तुम राम च गच्छथ। दूसरा मोहन और तुम दोनों जाते हो, मोहन युवाम च गच्छथ। इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के वचनानुसार होगी। जैसे मैं और राम जाते हैं, अहम रामस्य गच्छावः। राम तुम और मैं जाते हैं, राम त्वम अहम च गच्छामः। मैं तुम और वे सब पढ़ते हैं, अहम त्वम ते च पठामः। यहाँ तीनों पुरुषों के कर्ता भले ही हों लेकिन क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचनांत है। नियम पाँच, यदि कई कर्ता वा अथवा या से जुड़े होते हैं तो क्रिया अपने सबसे निकट पास के पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। जैसे मोहन अथवा तुम जाते हो, मोहन त्वम वा गच्छसि। तुम अथवा मोहन जाते हो, त्वम मोहन वा गच्छसि। तुम अथवा मैं बाजार जाते हैं, त्वम अहम वा आपणम गच्छामि। मैं अथवा तुम जाते हो, अहम त्वम वा गच्छसि। वे सब अथवा हम दोनों जाते हैं, ते आवाम वा गच्छावः। हम दोनों अथवा वे सब जाते हैं, आवाते वा गच्छन्ति। आदर्श अभ्यास तो लोट लकार आज्ञार्थक। नियम एक, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा प्रार्थना अनुमति आशीर्वाद आदि अर्थों में होता है। नियम दो, प्रथम पुरुष में इस लकार का प्रयोग प्रायः आज्ञा और इच्छा अर्थों में होता है। नियम तीन, मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग प्रायः आज्ञा प्रार्थना तथा आशीर्वाद में होता है। प्रायः आज्ञा और प्रार्थना में तू या तुम कर्ता छिप जाता है, ऐसी दशा में क्रिया छिपी हुई कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष की होती है। नियम चार, उत्तम पुरुष में इस प्रकार का प्रयोग इच्छा और प्रश्न के अर्थ में होता है। आदर्श वाक्य, राम विद्यालय जाएं और पुस्तक पढ़ें, राम विद्यालयं गच्छतु पुस्तकं च पठतु। सीता घर आएं तथा पुस्तक पढ़ें, सीता गृहं आगच्छतु पुस्तकं च पठतु। आप मेरे घर आवें, भवान मम गृहं आगच्छतु। तुम विद्यालय जाओ और पुस्तक पढ़ो, तुम विद्यालयं गच्छ पुस्तकं च पठ। मैं पढ़ूं लिखूं और खाना खाऊं, अहम पठानि लिखानि भोजनम च खादानि। क्या मैं जाऊं, किम अहम गच्छानि। वो लड़की क्यों नहीं जाए, सा बालिका किम न गच्छतु। राम और मोहन जाएं, राम मोहनश्च गच्छताम। वह और तुम जाओ, स त्वम च गच्छतम। मैं तुम और वह जाएं, अहम त्वम स च गच्छाम। राम अथवा तुम घर जाओ, राम त्वम वा गृहं गच्छ। मैं अथवा राम पत्र लिखे, अहम राम वा पत्रम लिखतु। राम प्रयाग जावे, राम प्रयाग नगरम गच्छतु। आदर्श अभ्यास त्रि विधिलिंग, चाहिए अर्थ। नियम एक, विधिवाक जिसमें चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, इच्छा प्रकट करना, अनुमति प्रार्थना, संभावना सामर्थ्य प्रकट करना आदि अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग होता है। विशेष, चाहिए से युक्त वाक्य में कर्ता में को का चिन्ह लगा रहता है और कर्म का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। आदर्श वाक्य, उसको खाना खाना चाहिए, स भोजनम खादित। छात्रों को विद्यालय जाना चाहिए, छात्रा विद्यालयम गच्छेयु। तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम पुस्तकम पठेय। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, अहम पत्रम लिखियम। मोरों को नाचना चाहिए, मयूरा अनुत्येयु। हम सबको विद्यालय में पढ़ना चाहिए, वयम विद्यालय पठेम। तुम्हें और मुझे जाना चाहिए, त्वम अहम च गच्छेव। मुझे अथवा राम को जाना चाहिए, अहम राम वा गच्छेत। राम अथवा मुझे जाना चाहिए, राम अहम वा गच्छेयम। तुम लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, यूयम दुवकरम परिश्रम कुर्यात्। विद्यार्थियों को परिश्रम पूर्वक पढ़ना चाहिए, विद्यार्थिनः परिश्रमेण पठेयुः। आदर्श अभ्यास 4, लंग लकार भूतकाल। नियमित, जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसके काल समय को भूतकाल कहते हैं, भूतकाल में लंग लकार होता है। नियम 2, कभी कभी वर्तमान काल की क्रिया में स्म जोड़कर भूतकाल व्यक्त किया जाता है, यह प्रायः था के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे गच्छति स्म गया था। आदर्श वाक्य, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तकम अपठत। वृक्ष से फल गिरे, विच्छात फलानि अपतन। हम लोगों ने दूध पिया, वयम दुग्धम अपिबताम। मैं विद्यालय गया, अहम विद्यालयम आगच्छम। तुम कल यहाँ गए, कहाँ गए? त्वम ह्यः कुत्र अगच्छः? राम मोहन बाजार गए, राम मोहनश्च आपणम आगच्छताम। राम श्याम और कृष्ण गए, राम श्याम कृष्णश्च अगच्छन्। मैं अथवा राम बाजार गया, अहम राम मह वा आपणम आगच्छत। मोहन अथवा मैं गया, मोहन अहम वा अगच्छम। वह नहीं लिखता था, स न लिखते स्म। वह लड़की पढ़ती थी, सा बालिका पढ़ती स्म। क्या तुम कल दिल्ली गए थे? किम त्वम ह्यः दिल्ली नगरम अगच्छः? आदर्श अभ्यास 5, लेट लकार भविष्यकाल। नियम 1, जब कोई कार्य आगे जाने वाले समय में होता है तब वह भविष्यकाल में होता है, और भविष्यकाल में लट लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप लट लकार के समान होते हैं, केवल मूल धातु में इश जुड़ता है। आदर्श वाक्य, वह आएगा और पुस्तक पढ़ेगा, स आगमिष्यति पुस्तकम च पठिष्यति। तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? त्वम क्यों न पठिष्यसि? मैं खाना खाऊंगा, अहम भोजनम खदिष्यामि। तुम और राम जाओगे, त्वम रामस्य गमिष्यथ। मैं अथवा राम जाएगा, अहम राम वा गमिष्यति। राम अथवा मैं जाऊंगा, राम अहम वा गमिष्यामि। वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे, तवश्व वाराणसी नगरम गमिष्यत। टेस्ट पेपर। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथियार है? अस्त्र। कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? मराठी। कौन सा शब्द वायु का समानार्थी? अनिल। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? अर्जुन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। किस रस की अभिव्यक्ति है? शांत रस। निम्नलिखित लोकोक्ति के लिए उपयुक्त विकल्प ज्ञात कीजिए। फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में काम करना। कौन सा उपन्यास जनेन्द्र रचित है? परख। सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए, इस वाक्य में अभ्युदय शब्द कौन से संदेह है? यौन शब्द। शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो रहा है, इस वाक्य में पवन शब्द का संदेह विच्छेद पोधन अन। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी रोचक एवं शिक्षाप्रद है, इस वाक्य में परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधार है। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। निम्नलिखित कौन सा व्यंग लेखक है? हरिशंकर परसाई। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन, माँ जवन हमार हिंसा लगत होए तवन हम का दई दें। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? अवधि। निम्नलिखित में एक लोकोक्ति का चयन कीजिए, एक पंथ दो काज। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। जात रूप का पर्याय सोना। एक उपमा अलंकार का अंग नहीं, इसका चयन कीजिए, विभाव। जहां चाह वहां रहा, इस कथन में रहा किस अर्थ में है? उपाय। मेरी बात मानिए तो बिना किसी प्रकार नुकसान उठाए अपना कार्य पूरा हो जाएगा। उपयुक्त कथन है, सांप भी मेरे और लाठी भी न टूटे। कौड़ी को न पूछना का उपयुक्त अर्थ निकम्मा समझना। भाव को तीव्र करने वाली वस्तु चेष्टा महादेव को क्या कहा जाता है? उद्दीपन। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसका जीवन सुखमय नहीं होता, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द शंकालु। विष्णु के अनेक अभिधान, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी एक शब्द नाम। जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिज्ञासु। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, इस शब्द का चयन कीजिए, सीधा साधा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सराहपा। मैं तो बड़ी मधुमास आली, इस वाक्य मधुमास किस माह का पर्याय है? माघ। कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? छप्पर। एक शब्द में द्विगु समास, शब्द का चयन कीजिए, सप्ताह। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण। उससे अब अकेले नहीं रह जाता, यह वाक्य किस प्रकार किस वाच्य में है? भाववाच्य। कौन कौंतीय नहीं है? नकुल। सूर्य का शत्रु माना जाता है? राहु। राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद राकाधन ईश। कौन युग शेष तीन से भिन्न? कंदमूल। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? लक्ष्मण। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में अधिकरण? रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरे होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष। जो आंखों के सामने घटित न उसे क्या कहा जाता है? परोक्ष। राधा ईशान से बड़े, इस वाक्य में से किस कारक का प्रसर्ग चिन्ह है? अपादान। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इस वाक्य किस प्रकार का वाक्य? मिश्रित वाक्य। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरी नाविक धीरे धीरे कर। रचयिता जयशंकर प्रसाद। आतंकवादी हमलों से समाज में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इस आशा समाहित करने वाला मुहावरा आग लगना। किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है। उचित शब्द विश्लेषण। कौन सा शब्द कालवाचक है? अवधि। कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? आराती। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीष्म। एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर? अधिवक्ता। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। प्राचीन भारत में छात्र अंतेवासी होते थे, इस वाक्य में अंतेवासी शब्द का अर्थ गुरु के समीप रहने वाला। आजकल भौतिक प्रगति की ओर लोगों का ध्यान अधिक है, इस वाक्य में भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। आध्यात्मिक। सज्जन मृदुभाषी होते हैं, इस वाक्य मृदु का विलोम शब्द बताइए। कटु। ज्ञम वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज धन अंग इया। निखित में कौन सा इंद्र का पर्याय है? शक्र। एक शब्द के वर्तन अशुद्ध है, इस शब्द का चयन कीजिए। अन्वय। एक शब्द संधि के दृष्टि से अशुद्ध है, इस शब्द का चयन कीजिए। तथापि। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? भरतचरण गुप्त। सुदास ने किस विधि इच्छा प्राप्त की? वल्लभाचार्य। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? चिंतामणि। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? भूषण। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य। तुलसीदास का समय क्या है? 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी के विषय में कथन किसका है? आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमदन ते। विद्याधन में कौन सा समास है? कर्मधारा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। धाय धाम काम सब त्यागी कौन सा छंद है? चौपाई। कौन सा शब्द सेना का पर्याय नहीं है? हाटक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। अनामदास का पोता किसकी रचना? हजर प्रसाद द्विवेदी। इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु। कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? अंश। घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? घोड़ा धन दौड़। एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। तरणई। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित प्रज्वलन शब्द शुद्ध रूप प्रज्वलन। निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होना, बचपन में बहुत बुद्धिमान होना, तालू में जीभ न लगना, चुप न रहना, मुंजी भांग न होना, दरिद्र होना। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल। द्रवह सुदशरथ अजीर बिहारी, मेरे कांग्रेस शब्द का अर्थ अजीर का आंगन। यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान है, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है? इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द अनभिज्ञ। सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है? चक्रवाक। आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? क्रिया संबंधी। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अचानक क्रिया विशेषण है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? अपादान। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की? अकर्मक। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, के लिए उपयुक्त मुहावरा खटाई में पड़ना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास समाट कह जाते हैं तथा कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, इसके लिए प्रयुक्त वाक्यांश क्या होगा? कलम तोड़ना। भारत भारती किसकी रचना है? मध्यचरण गुप्त। नई पराग नई मधुर मधु नई विकास यही काल, अली कली हीन स्यो बंदे आगे कौन हवाल, कौन सा अलंकार या नियुक्ति? निखित कहानी विश्व सानी कहानी का चयन चीफ की दावत। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ त ध न वर्ण क्या कहलाते हैं? दंत्य। कौन सा वर्ण अंतस्थ है? य। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? ट। मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में अब वह छाटिए यथाशक्ति। निम्न से सही वर्तने वाला शब्द आशीर्वाद। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अधि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। त्रिनेत का सही अर्थ क्या है? शिव। निम्न शब्द में विसर्ग संधि किस शब्द में है? अधोपतन। सही वर्तने वाला शब्द चुनिए पूजनीय। कौन सा रस रसराज माना गया है? श्रृंगार। शोक किस रस का स्थायी भाव? करुण। कहें कभी बेन बेन ब्याल की चुराए लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? चंचला। आंजनीय का सही अर्थ क्या है? हनुमान। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या अर्थ है? आत्म प्रशंसा करना। उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य में शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे, कौन शब्द रखेंगे? अनेकों। जिसका कोई शब्द उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो तो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, उसके प्राण निकल गए। आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य में शुद्ध कीजिए, आप लोग अपनी अपनी राय दें। लप्पो चप्पो करना का क्या अर्थ है? खुशामद करना। स्वागत में कौन सा संधि है? यौन संधि। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहीं ठौर ठिकाना न होना। नौ दिन चले अढ़ाई कोस का क्या अर्थ है? परिश्रम अधिक परिणाम कम। हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? स्वामी रामानंद। दुल्ह राम सी दुल्हिरी तुलकी तुलसी के लिए प्रबंधक ग्रंथ की पंक्ति है। किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? गीतावली। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव। तुलसी की किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई? रामचरित मानस। सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए? मुंशी सदा शुक्लाल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया? गर्षदासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? 1919। कौन सा कवि द्विवेदी युग का कवि है? मैत्रीचरण गुप्त। पृथ्वी राज रासो किस काल की कृति है? वीरगाथा काल। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति। विनायक का अर्थ क्या है? गणेश। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता। घड़ी में तोला, घड़ी में तमाशा। जरा सी बात में खुश और नाराज होना। गधा खेत खाए चूल्हा पीटा जाए। अपराध कोई करे दंड किसी को मिले। घर की खांड किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा। अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीजों के पीछे भागना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हतोत्साहित होने होंगे तो असफलता मिलेगी, उत्साहपूर्वक कार्य करने पर सफलता। जैसी करनी वैसी बननी, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। सिद्धांत में मनुष्य। तलवार की धार पर चलने का कार्य करना कठिन कार्य करना। शुभ मंत्र हो जाने का अर्थ गायब हो जाना। कान काटना का अर्थ चतुर होना। कान खड़े होना का अर्थ सतर्क होना। विक्रमोर्षीय रचयिता कालिदास। दशकुमार चरित के रचयिता दंडी। शुद्रक की रचना कौन सी है? मुक्तचकटकम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार कालिदास। गीत गोविंद किस संस्कृति किस कवि रचना? जयदेव। नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन इक। सच्चित का संधि विच्छेद क्या हो? सत्यन चित। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। रक्तवर्ण में समास बताइए? कर्मधार है। राजन शब्द का पंचमी एकवचन का रूप राज्ञ। जगत शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप जगति। अस्था धातु का लग्न लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप अतिष्ठत। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप गच्छतु। यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ नक्षत्र। अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? पराकाष्ठा। कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं? अनुज। कौआ चला हंस की चाल, छोटा द्वारा बड़ों की नकल करना। मृत्यु से जीवन की खाली स्थान का ज्ञान होता है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रयुक्त शब्द नश्वरता। संस्कृति हमें रिक्त स्थान प्रदान करती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द संस्कार। शुद्ध वाक्य कौन सा? आप चलिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे घर जाना है। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अक्षर। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रवृत्ति। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बुद्धिजीवी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सौभाग्यशाली। शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? चोटी। कौन सा प्रयोग गलत है? कृपया शीघ्र उत्तर दें। कन्नी काटना बचकर निकलना। साँच कुआच नहीं, सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता। तत्धनमय का संधि रूप तदमय। आसमान मेरी मुट्ठी में है, इस कथन किस स्थिति का द्योतक है? आत्मविश्वास। तत्सम शब्द कौन सा है? अवतार। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ईर्षा। ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा? अनिवार्य। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? स्वाभाविक। जो नपातुला बोलता हो उसके लिए एक शब्द मितभाषी। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। निडर शब्द में कौन सा समास है? व्ययीभाव। किस भाग में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधि। स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्गीय। किस भाग में से का प्रयोग अपदान कारक के रूप में हुआ है? घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली। किस भाग में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? कपिल अच्छा खेलता है। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? विकास।